Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. ज्ञान सरिता बीके जगदीश भाई के साथ।
मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली बात ये, हम पहले सेवा भी करते थे, मिनिस्टर से मिलने जाते थे, कोई साधन व्हीकल तो होता नहीं था, उनसे मिलके जजेस से मिलके जब हम वापस लौटते थे तो बाहर तक छोड़ने आते थे और पूछते थे आपके पास कोई साधन है। हमारे पास तो साइकिल रिक्शा भी नहीं होती थी, क्योंकि साइकिल रिक्शा को एक घंटा रोक ले वो तो 20-25 रुपए तो वैसे रुकने के ही ले लेगा। अब यज्ञ में दान किए हुए पैसे, हम इतने पैसे उसको रोके रखे। हम तो ये समझते थे गुलजार बहन और वहां बड़ी बड़ी वरिष्ठ बहनें, कितनी दूर मिनिस्टर्स की कोठियों के पास कोई बस स्टॉप थोड़ी होता है, वो तो साइलेंस जोन होता है, वहां पर से तो व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स जाते भी नहीं, तो बस का स्टॉप कहाँ होगा। एक डेढ़ मील तो चल के पहले बस स्टॉप पर जाते थे, फिर बस तो कभी रुकती थी कभी नहीं भी रुकती थी, हम उसको हाथ ही दिखाते रह जाते थे और खड़े रहते थे। तो लेकिन एक आनंद था उस जीवन में, एक लज्जत थी, एक मजा था। आज भी वो हमारी यादगार बन गई कि क्या हम करते थे। वो जो सुख था जीवन में, एक विशेष प्रकार का सुख था। ज्ञान का अपना सुख है, योग का अपना सुख है, पवित्रता का अपना सुख है, इन सब के बहुत अलौकिक सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। लेकिन त्याग में, जो त्याग से सेवा की जाती है, मैं आपको सच कहता हूँ, उसकी लज्जत भी एक अलग प्रकार की। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन, अच्छे से अच्छे वैभव भी आपको मन को इतना सुख नहीं दे सकते जो उत्सर्ग और त्याग में सुख है। ये तो स्थूल मैंने बताया, लेकिन बाबा ने हमें कितने प्रकार के त्याग बताया हुआ है, सूक्ष्म भी और सब तरह के भी। लेकिन मैं ये कह रहा था कि सेवा जब हम करते हैं, जैसे त्याग में बाबा ने क्या कहा हुआ है कि सबसे बड़ा त्याग है देह अभिमान का। देह अभिमान का त्याग आपने कर दिया तो सब उसमें समा गए, जैसे कहते हैं हाथी के पांव में सबका पांव शामिल हो जाता है। अगर ये एक त्याग हमसे हो गया, इसी के में ही लगे रहते हैं। रोज मुरली में आता है बच्चे मनमना भाव, आत्मा निश्चय में स्थित हो, वो सोल कॉन्शियस बनो। देयर इज नॉट ए सिंगल डे व्हेन दिस लेसन इज नॉट रिपीटेड। हर दिन हमें ये बात बताई जाती है, लेकिन हम ही मिट्टी के माधव हैं, काठ के बने हुए गणेश बैठे रहते हैं, सुनते हैं लेकिन टस से मस नहीं होते। वही बात सुनते हैं, वही के वही रहते हैं। लोग इतनी मुद्दत में पीएचडी कर गए और कई कई मास्टर्स डिग्री प्राप्त कर गए और हम एक डिग्री नहीं प्राप्त कर पाए इतने वर्षों में, कि मैं आत्मा हूं मैं शरीर नहीं, इसको क्या कहेंगे हम। ये हमारा एक प्रमाद समझ लीजिए, आलस समझ लीजिए, हमारी गफलत समझ लीजिए। इतना ऊंचे से ऊंचा पढ़ाने वाला हमें मिला है और इतनी अधिक से अधिक पावरफुल बाबा की वाणियां हैं, लेकिन इस चीज को हम अचीव नहीं कर पाए। तो इसलिए बाबा ने इस पर महत्व देते हुए यही कहा है कि सबसे बड़ा जो त्याग है वो तो देह अभिमान का त्याग है। लेकिन मैं समझता हूँ, कई दफा जब हमारे मन यहाँ पर क्लास में प्रश्न उठते हैं, पूछा जाता है कि दुख का कारण क्या है, माया का मूल क्या है, इत्यादि इत्यादि बहुत से प्रश्नों के हमारे 4-5 नफे तुले सेट हुए हुए बने से एक ऑलराउंडर क्वेश्चन, जैसे अभी निकले थे ना ऑलराउंडर भाई और बहने, जूनियर भी और सीनियर भी, ऐसे हमारे कोई क्वेश्चंस के उत्तर भी ऑलराउंडर है, जो सब जगह फिट होने की हम कोशिश करते हैं। मास्टर की जैसे होती है, हर जगह हम लगाने की कोशिश करते हैं, गाड़ी चल तो पड़ती है किसी न किसी तरह से। जैसे कई दफा चाबी ना मिले, कील से भी आदमी काम कर लेता है, चला लेता है, इट्स समथिंग लाइक दैट, टिक्स हो तो जाता है। लेकिन फर्क है, हमने देखा है कि सिर्फ देह अभिमान से नहीं, अभिमान तो सब बुराइयों की मूल है ही, चाहे वो देह अभिमान हो चाहे वो ज्ञान का ही अभिमान हो। मैं योगी हूं, इसका ही नशा मनुष्य को आ जाए कि मैं बहुत बड़ा एक प्रकार का योगी हूं, लोग हमारे नाम के साथ राजयोगी लगाने लगे और हम भी मस्ती से चलने लगे कि हम भी कुछ हैं संसार में। अभिमान तो कई तरह का हो सकता है, लेकिन हमने ये देखा कि सेवा का भी एक अभिमान होता है। सेवा जिसमें भाव ही त्याग का, दूसरे की एक खिदमत करने का है, जिसको हम ये कहें, हिंदी में हम सेवा कहते हैं, एक बहुत अच्छा सा शब्द है, आकर्षक। लेकिन अगर इसकी अंग्रेजी में, हमने देखा कि विदेशी लोग जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो मैं सेवक हूं, ये नहीं कहेंगे आई एम योर सर्वेंट। सेवक का ये भी एक ट्रांसलेशन तो हो सकता है ना, आई एम योर सर्वेंट, मनुष्य समझता है ये मेरी इंसल्ट है, आई एम नॉट हिज सर्वेंट, ही इज नॉट माई बॉस, ये मैं कैसे कहूंगा कि मैं इसका सर्वेंट हूं, सर्वेंट नहीं। तो वो ये कहते हैं आई एम सर्वर, नया सा एक शिष्ट, एक बड़ा शब्द निकाल लिया कि भाई मैं सर्वर हूँ, सर्वेंट नहीं। तो क्या इसमें फर्क पड़ता है, सोचने की बात है। पहले तो बाबा कहते हैं कि 22 रह तक भी ये लिखते थे कि यू आर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, लेटर्स में किसी को लिखते थे, आपका शुभाभिलाषी भी कई लोग लिखते थे, आपका कई लोग ये भी लिखते थे खिदमतगार। तो इसमें कोई हर्ज की बात तो नहीं, एक नम्रता का एक भावना है। लेकिन मनुष्य शब्दों में भी जब जाता है तो काफी उसमें से मीन मेख निकालने लगता है। तो सोचने की बात यह है कि जो सेवा जिसमें समाया हुआ ये भाव है कि दूसरे को हम सेवा दें, अपना कुछ त्याग करके दूसरे का कोई लाभ करें, उसमें भी जैसे देह अभिमान सब विकारों की जड़ है, माया की जड़ है, आप देखेंगे सेवा में भी अभिमान आ जाता है। देह अभिमान एक प्रकार का अभिमान है, सेवा अभिमान एक दूसरी प्रकार का अभिमान है। जैसे देह अभिमान को समाप्त करने के लिए भट्टी की जरूरत है, वैसे सेवा अभिमान को भी दूर करने के लिए भट्टी की जरूरत है। इसलिए शायद बड़ी बहनें हमें कई दफा कहती होंगी कि काफी सेवा आपने कर लिया, भट्टी कर लो। शायद उनका ये ख्याल होता हो कि सफाई साथ साथ हो जाए, क्योंकि मेला मलाखड़ा मनाने के बाद काफी कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद सफाई की जरूरत रहती है। वट एवर मे बी द रीजन, लेकिन ये मैं कोई यहाँ इसके लिए नहीं कह रहा, सब जगह जहां बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं सभी भाई बहन कहते हैं कि बहन जी छोड़ो आप सेवा को, आपको ये प्रोग्राम रखो, स्व उन्नति का प्रोग्राम रखो। तो कैसे है कि जो सेवा है वो अभिमान का रूप ले लेता है, और सेवा जिसमें उत्सर्ग समाया हुआ है उसकी बजाय वो सेवा अभिमान का एक हमारे सामने फॉर्म ले लेता है। तो आप देखेंगे कि जब हम सेवा करते हैं, अगर दत्त चित होकर जम कर पूरी अटेंशन से बड़े ढंग से प्लान करके सबको साथ मिलाकर कोई सेवा हम करते हैं तो सफलता होती है, और सफलता होना लाजमी है। क्योंकि केवल इसलिए नहीं कि आपने उसको बहुत अच्छा प्लान किया है और बहुत अच्छे ढंग से उसको किया है, आप टैलेंटेड व्यक्ति हैं, बल्कि बहुत से लोगों ने उसमें दान का पैसा लगाया है और बाबा को दिया है, उन्होंने बाबा को सामने रख के सहयोग दिया है, तो बाबा उसको सफल तो करेंगे। और इतने भाई बहनों ने जो उसमें सहयोग दिया है तो उसकी मेहनत है अच्छे शुभ भावना शुभ कामना से, वो फलीभूत तो होगी। जब वो फलीभूत होती है, सेवा का फल निकलता है, नेचुरली जो एट दी हेल्म ऑफ दी अफेयर्स एट दी हेड होते हैं, जो विशेष निमित्त बनते हैं, और दूसरे भी जो साथ साथ होते हैं, उन सब की लोग प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत सफलता निकली। कोई सेंटर स्थापित करता है, कोई जोन का इंचार्ज होता है, कोई सेंटर का इंचार्ज होता है, कोई किसी विभाग का डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है, जो व्यक्ति जो कार्य करता है सब लोग कहते हैं कि ये बहुत सेवा करता है, इसने इतने सेंटर खोले, इतनी आत्माओं को ज्ञान और योग सिखाया, ये इतने को योग शिविर कराने के लिए मधुबन ले आया, इत्यादि इत्यादि। जिसने जो भी सेवा की हो उसका अपने इस परिवार में वर्णन तो होता है, उस वर्णन को सुनते सुनते मनुष्य में जो भावना है सेवा की वो गौण होने लग जाती है, और मैं भी कुछ हूं वो ज्यादा भावना होने लग जाती है। जैसे देह अभिमान क्यों होता है, क्योंकि आत्मा देह में रहती है, देह के नाम से लोग हमें पुकारते हैं, देह के संबंधों में हम लोग वर्तते हैं, देह के संबंधों की चर्चा होती है, देह से ही व्यवहार करते हैं, तो उसका कारण उसका फल ये होता है कि देह अभिमानी बन जाते हैं। इसी प्रकार से सेवा में आते आते जब हमारी प्रशंसा होने लग जाती है तो हमको आदत पड़ जाती है, कहीं अगर प्रशंसा की बजाय बुकेस की बजाय ब्रिक बैट्स मिलने लग जाते हैं, अगर प्रशंसा की बजाय उसका कोई रिवर्स कोई कह देता है, हम उसको शत्रु समझ लेते हैं, हम समझते हैं कि ये तो मेरा विरोधी है, उससे हमारी अनबन हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है। बल्कि अगर कोई सेवा करता है और हमारे क्षेत्र हैं, हमारे क्षेत्र में अगर कोई घुसपैठ करता है तो हमको लगता है कि ये भी कोई विदेशी इसमें आक्रमण हमारे देश पर इसने कर दिया, तो ये भी एक भावना मनुष्य के जीवन में आ जाती है। वो जो हमारे उदारता है वो गुण तो पहले ही पहले शूट आउट हो जाता है, दैट बिकम्स डेड। तो ये सेवा का जब हम कार्य करते हैं उसमें अनेक प्रकार की बातें आती है, जिसकी ज्यादा डिटेल बनाने की जरूरत नहीं तो अगर उसकी विषय सूची बनाए तो एक पुस्तक के बराबर तो मेरे ख्याल में उसकी विषय सूची बन जाए कि सेवा में भी कितने लाभ हैं, और अगर कोई उसको ठीक ढंग से नहीं करता, अगर दूसरी बातों में आ जाता है त्याग भावना को छोड़कर, तपस्या को छोड़कर, तो फिर बाकी क्या रह जाता है, तो उसके विषय के टाइटल सब बदल जाते हैं, दे बिकम रिवर्स। यू नो ऑलरेडी नो अबाउट इट। तो इसलिए जब वो देह अभिमान की बजाय सेवा अभिमान हो जाता है, चाहे वो प्रशंसा से और चाहे इन और सब कारणों से, तेरा मेरा मैं आप ये बंटवारा, इस प्रकार की बातें, वी वांट टू शेयर द प्रेस्टेज, शेयर द रिस्पेक्ट, शेयर द ऑनर, शेयर द, ये चीजें बहुत डेंजरस है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, ड्रामा का एंड नजदीक आता जाता है, और मैं ये देखता हूं कि ये चीजें ज्यादा आती जा रही है। आई एम सॉरी टू से दिस, ये चीजें ज्यादा आती जा रही हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, हम जमकर सेवा करें। बाबा कहते हैं कि सेवा का जो ताज है, जो यहाँ सेवा का ताज पहनेगा वो भविष्य में राज का ताज पहनेगा, लेकिन सेवा के ताज के साथ अगर हमारे साथ तपस्या का ताज नहीं होगा, त्याग का ताज नहीं होगा, जो कि लाइट का क्राउन है, सेवा का ताज तो स्थूल है, लेकिन उसके साथ साथ अगर लाइट का क्राउन जो तपस्या का क्राउन है, और उसके साथ साथ जो त्याग का क्राउन है जिससे हमारे जीवन में पवित्रता आती है, तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो त्याग पर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इसी प्रकार से तपस्या की, चलते चलते हमारा जीवन ऐसा ना हो जाए हम समझेंगे बहुत योग लगा लिया है। कहीं कोई भी काम काफी कर लेने के बाद मनुष्य का एक स्वभाव बन गया है कलयुग में, जहां हमारी और बहुत सी खराबियां आ गई हैं, वहां ये आ गया है कि हम ऊब से जाते हैं, बोर हो जाते हैं किसी चीज से। आपने अभी जब मैं बैठा यहां पर योग के विषय में एक गीत सुना था कि योगी वही है जो निंदा स्थिति से भी ऊपर उठ के रहता है, योगी के लक्षण उसमें बताए गए थे। आपको अपना अनुभव होगा कि जब पहली बार ये गीत बजा होगा आप झूम उठे होंगे, और जैसे जैसे बजता होगा उस वक्त कुछ आपका वजद की हालत कुछ और होगी। लेकिन अगर ये एक साल तक निरंतर रोज बजता रहे ये रिकॉर्ड, तो आप कहेंगे अरे भाई तुम्हारे पास कोई और रिकॉर्ड नहीं है, टूट गए क्या, सब खत्म हो गए वो कैसेट्स, कभी कभी तो और भी बजाया करो। हालांकि इसके बजाने में क्या एतराज है, इसमें तो हमारे ज्ञान की सभी बातें आ जाती हैं। अगर इस पर ही एक कमेंट्री की जाए तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं जो छूटी हुई है। तो इसी तरह से हमने देखा है कि ये मनुष्य के एक स्वभाव है कि कोई भी कार्य करते करते फिर वो उससे उसको उबना कह दो, बोर, आजकल की भाषा में जो छोटा बच्चा भी कहता है मम्मी मैं तो बोर हो गया, वो बोर शब्द कह दो या कोई और चीज कह दो जिसमें फॉल्स सेटिस्फेक्शन मनुष्य को हो जाए, नॉट रियल सेटिस्फेक्शन। कौन है जो कह सकता है कि मैंने काफी योग लगा लिया है? काफी का क्या मतलब, काफी की परिभाषा क्या है, किसको आप कहते हैं कि काफी योग लगाया? बाबा तो कहते हैं कि हमें इतना तपस्या मूर्त होना चाहिए। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो शराब पीता है, नशा करता है, किसी मस्ती में होता है, वो जब चलता है तो लगता है कि ये शराब पिए हुए, उसके नैनों से, उसके चलन से ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त किसी और दुनिया में है ये। आपको मालूम हो कि जैसे एक पागल खाने में एक जवाहरलाल नेहरू गए थे और वहां उन्होंने कहा कि हमें एक पागल से मिलाया जाए, जरा दो मिनट बात करा दी जाए। वैसे तो लोग प्राइम मिनिस्टर से बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से एक पागल से अपॉइंटमेंट ली कि देखें तो सही पागल कैसे होते हैं। तो एक पागल लाया गया उनके सामने, तो नेहरू ने उसको कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, समझा? कहता है हाँ कभी हम भी ऐसा सोचा करते हैं। कहता है ऐसे होता है, हमारे साथ जैसा हुआ है तुम्हारे साथ भी एक दिन वैसा ही होगा। उसको वैसा बोला वो, तो वो पागल के लक्षण होते हैं। उसका पागल किस दुनिया में रहता है, उसकी दुनिया एक अपने किस्म की दुनिया है। ऐसे जो नशाई है वो भी समझता है कि मैं भी क्वीन एलिजाबेथ हूं, वो अपनी दुनिया में रहता है, कुछ और उसके ख्यालात होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के स्टेटस का व्यक्ति हो। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो नशे में हो, मस्ती में झूम रहा हो, उसकी चलन से, उसके नैनों से, उसके वाचा से पता लगता है कि ये किस मस्ती में है, और जो तपस्वी होगा उसके चेहरे से, उसके नैनों से, ऐसा नहीं कि वो उसके समतल होगा, वो उसके पैरेलल होगा, वो तो लड़खड़ाता है। ऐसा नहीं आप योग के नशे में लड़खड़ाने लगे और कहने लगे जगदीश भाई ने कहा था कि उसका वो उसी से स्पष्ट होगा, ये भी किसी नशे में है, और फिर आप कहने लगे कि भाई मैं तो रूहानी नशे में हूं। लेकिन जरूर जिसकी जो स्थिति होती है वो उसकी कृति से, वृत्ति से, उसकी पर्सनैलिटी से वो लोगों के सामने जरूर आती है। तो बाबा का कहना ये था कि उसके नैनों में बाबा की जो वो याद समाई हुई होगी, उससे जो नैन उसके होंगे और उसकी जो मुस्कुराहट होगी, उसके चेहरे पर जो झलक होगी, जो उसके वचन निकलेंगे मुख से, जिस प्रकार से एक रॉयल वे में वो चलेंगे या जो उसका व्यवहार होगा टोटल, उससे प्रत्यक्षता होगी। प्रत्यक्षता केवल ये कल्पवृक्ष और त्रिमूर्ति समझाने से केवल नहीं होगी। ये तो एक पहला लेसन है जो हम किसी को परिचय देते हैं शिव बाबा का। लेकिन दूसरे को ये महसूस हो कि हमने जो योग सीखा है उससे हमारी लाइफ में क्या परिवर्तन आया है। तो बाबा ने कहा था कि जैसे आप किसी को विजिटिंग कार्ड देते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपने क्या डिग्री प्राप्त की है या क्या आपका ऑक्यूपेशन है, वैसे आपका जो चेहरा है, आपकी जो पर्सनैलिटी हो, वही विजिटिंग कार्ड हो। दैट शुड स्पीक, जैसे कहते हैं कि मुंह बोलती तस्वीर हो। आप बोले ना बोले, लेकिन जैसे बाबा की बायोग्राफी में हम बताते हैं कि कोई सैकड़ों हजारों व्यक्ति जा रहे हो, बाबा भी अगर उसके बीच में जा रहे हो तो लोगों का ध्यान जाएगा कि ये विशेष है। जिन्होंने मम्मा को देखा है, बाबा को देखा है, उनको मालूम है ये। आपने ऐसा कभी कोई चित्र देखा है? हम भी कई जगह पर गए हैं, कई माताओं को देखा है, कई बहनों को देखा है। इट इज यूनिक। अगर आप मम्मा को चलता हुआ देखते, बात करता हुआ देखते, बैठता हुआ देखते, उनके चेहरे को आप देखते, तो एनीवन वुड फील। कई जगह हमने देखा,